क्या फीकल बाबा की मुख्य बातें है? मन जीत जगत जीत, सबसे इम्पोर्टेंट बात। और शुरू में क्या था, क्या अनुभव हुआ बाबा से शुरू में? बहुत प्यार, प्यार का सागर। मुझे ऐसा लगता है बाबा ने ज्ञान तो बहुत दे दिया है, व्यक्त में भी 44 साल बहुत ज्ञान दे दिया। अब बाबा एक दूसरा काम कर रहे हैं, जो इस सीजन में पहले दिन से देख रहे हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं, है ना? ऐसा इसके पीछे एक रहस्य और भी है। भक्ति काल जब से शुरू होगा वापस से, तो हम सभी आत्माएं भगवान के इस प्यार को याद किया करेंगे, क्योंकि वो हमारे अंतर मन में गहरा समा जाएगा। तो बाबा इतना प्यार दे रहा है कि आत्माओं को उसकी डीप फीलिंग हो जाएगा, यही प्यार की फीलिंग। कल तो सबने देखा, जैसे बाबा की बोलने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, बार बार जैसे किसी माँ का कोई बहुत प्यारा बच्चा हो, उसे बार बार देखे, देखती है ना माताएं, उससे तृप्ति होती है। बाबा भी अपने बहुत प्यारे बच्चों को जैसे बार बार दृष्टि दे रहा था। जरूर कोई ऐसी महान आत्माएं भी सभा में आ गई थी, या उसके प्यार में मगन रहने वाली भी आ गई थी, जिनके प्यार का वो रेस्पॉन्स भी दे रहा था। तो बाबा बहुत प्यार हम सबको दे रहे हैं। और क्या कहा बाबा ने, ये प्यार तुम्हें क्या बना देता है? शरीर ही बेसिनारा कर देता है। संसार के प्यार देहभान बढ़ाते हैं, मोह बढ़ाते हैं, और परमात्म प्यार शरीर ही बना देता है। ये इस प्यार की बहुत बड़ी विशेषता है। और क्या कहा बाबा ने, वरदानी स्वरूप, बाबा वरदान भी देते हैं। वरदान किन्हें मिलते हैं? हर महावाक्य वरदान है, पर वो वरदान किनके लिए बनते हैं? जो उन्हें वरदान स्वीकार करते हैं, जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहते हैं, उनकी बुद्धि में वरदानों को ग्रहण करने की शक्ति आ जाती है। वरदान किसने ग्रहण होता है, किसमें होता है? माताएं बोले, मैंने बता तो दिया, किसमें होता है? नहीं, वरदान ग्रहण करती है बुद्धि। कौन ग्रहण करता है वरदान? और वो बुद्धि जो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहती हो, वो बुद्धि जो लंबा काल व्यर्थ से मुक्त रहती हो, ऐसी बुद्धि एक स्वच्छ पात्र बन जाता है, शक्तिशाली पात्र बन जाता है, जिसमें बाबा के वरदान समा जाते हैं। जिस बुद्धि में व्यर्थ है तो क्या होगा वरदानों का, क्या होगा? बुद्धि का पात्र व्यर्थ से भरा हुआ है, आपका पात्र गंदगी से भरा हुआ है, उसमें दूध डाल दिया, क्या होगा? दूध का निकल नहीं जाएगा, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। ऐसे जिसकी बुद्धि में गंदगी है, जिन्होंने अपने मन को स्वच्छ नहीं किया है, बुद्धि क्लीन नहीं है, वरदान ठहरेंगे नहीं। अगर हमें बाबा के वरदानों को वरदान रूप में जीवन में लाना है, तो लंबा काल ईश्वरीय नशे में रहना होगा। ये नशे स्वमान जो हमारी बुद्धि को योग्य बनाते हैं सब कुछ धारण करने के। और आगे चलें, क्या कहा बाबा ने, खुश रहो और खुशी बांटो। कौन बांट सकते हैं खुशी? जिनके पास खुशी का भंडार बन गया हो और जिनकी खुशी बार बार नष्ट होती हो उनका क्या होगा? वो खुशी मांगने वाले बन जाएंगे। कोई हमारी महिमा करे तो हम खुश हो जाएं, कोई मन इच्छित वस्तु हमें मिले तो हम खुश हो जाएं, बच्चे ठीक ठीक रहे तो माँ खुश हो, और बच्चे गड़बड़ कर रहे हो तो माँ की खुशी चली जाए। तो जहाँ खुशी किसी आधार पर आधारित है वो खुशी परमानेंट नहीं हो सकती। अगर सदा खुश रहना है तो ईश्वरीय ज्ञान से, ईश्वरीय प्राप्तियों से बहुत खुश रहना है। मैं आज का एक अनुभव सुनाऊं। आज एक माता मिलने आई मेरे से, छोटी बच्ची उसके साथ थी। कहा मुझे बहुत बंधन है, बाबा ने तो कह दिया खुश रहना चाहिए, मेरा पति मुझे बहुत गाली देता है। गाली भी अच्छी अच्छी गाली देता है। कहा मेरी सहन शक्ति जवाब दे जाती है, फिर मैं भी गर्म हो जाती हूँ। अगर दो गर्म हो जाएं तो क्या होगा? वो आग क्या काम करेगी? दूर दूर तक जलाएगी। तो कहा मैं यहाँ आई हूँ, मेरा पति दिल्ली की है, वो मेरा पति दिल्ली में बहुत बड़ा ज्योतिषी है। मैं यहाँ आ गई तो उसने मुझे बताया कि ज्योतिष अनुसार तुम्हारा बहुत सुंदर समय चल रहा है आज। कल बताया था बाबा के दिन, तुम्हें कोई बहुत अच्छी चीज मिलने जा रही है। मैंने कहा तो तुमने बताया नहीं उसे? कहा नहीं, मैं तो नहीं बताया। मैंने कहा तुम्हें बताना चाहिए कि तुम्हारा ज्योतिष संपूर्ण सत्य है। मुझे सबसे बड़ी चीज मिल गई। कौन? स्वयं भगवान, प्रभु मिलन का सुख मिल गया है, तुम्हें उसे बताना चाहिए। कहा भी बताती हूँ फोन करके। जब तुमने इतनी अच्छी चीज से उसे वंचित रख दिया तो उसका भी अच्छा टाइम आ जाएगा। केवल वो तुम्हारे अच्छे टाइम को देख के खुश नहीं होगा, उसका भी अच्छा टाइम आ जाएगा। तो देखिए, सबसे बड़ी प्राप्ति करने वाले भी यदि खुश नहीं रहेंगे, जिनके पास संपूर्ण ज्ञान आ गया है, जिनकी सत्य की खोज समाप्त हो गई है, जिन्हें कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा है, वो भी यदि खुश नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? रहेंगे अभी रहते ही खुशी अच्छी छोटी बात खुशी छीन लेती है। माताओं का क्या अनुभव है? किसी ने कह दिया सेवा अच्छी नहीं की माता जी, खुशी खत्म। एक माता का पीछे अनुभव था, 3 मास सेवा की, जाने से 1-2 दिन पहले जिसके पास वो थी उससे उसका झगड़ा हो गया। कहा तुम कुछ सेवा नहीं करती हो, बस बेचारी की सारी खुशी सारा नशा गायब हो गया। मेरे पास आई, कहा ये तुम्हारे भाई कैसे हैं यहाँ वाले? मैंने कहा वो कैसे भी हो पर तुम्हारी खुशी कैसी है? वो इतनी कमजोर क्यों है कि किसी के कहने से नष्ट हो जाए? हमारी खुशी इतनी कमजोर ना हो जाए कि वो दूसरों पर आधारित हो। कोई चाहे तो हमारी खुशी छीन ले जाए, कोई चाहे तो हमें बहुत खुश कर दे, महिमा कर दे तो हम फूले ना समाए, जरा सी लानी कर दे तो मुंह खुला लें। रहेगा ऐसा? अच्छा, क्यों हमें बहुत खुश होना चाहिए? कौन है हम सब? माताएं कौन है? कौन है माताएं? शिव शक्तियां हैं। कौन है? शिव शक्तियां। अगर मंदिर में आप शिव शक्ति बैठी हो और भगत देख लेंगे हमारी देवी खुश नहीं है तो भक्तों का क्या हाल होगा? क्या हाल होगा? भगत कहेंगे देवी खुद ही खुश नहीं है, हमें क्या देगी? लगता है किसी ने देवी को नाराज कर दिया। कई देवियां है ना नाराज हो जाती हैं, भक्ति में भी कई देवियां नाराज हो जाती हैं। कौन सी देवी? कौन सी? जो संगम युग पर नाराज होती थी, उसके भक्तों से वो भी नाराज, चढ़ावा ठीक नहीं चढ़ाया नाराज हो गई, स्तुति ठीक नहीं की नाराज हो गई। तो जिनकी खुशी स्तुति पर और चढ़ावे पे आधारित है वो संसार को खुशी बांट नहीं सकते, खुशी बांटनी है। क्यों हमें खुश रहना है? क्योंकि हम इस सृष्टि के आधार मूर्त हैं, महान आत्माएं सृष्टि के आधार हैं, हैं? हम खुश होंगे तो जहान खुश होगा। सब संकल्प किया करें, मन जरा भी उदास हो याद करें, संसार की अनेक आत्माएं उदास हो जाएंगी। रोए माताएं तो क्या याद करें? अगर माताएं रोने लगे तो क्या याद करें? बोलो ना, मैंने उत्तर दे दिया। सारा संसार रोने लगा है, अच्छा लगेगा? परिवार सारा रोने लगे, संसार रोने लगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम जितने शक्तिशाली होकर रहेंगे संसार के सभी मनुष्यों को शक्तियाँ मिलती रहेगी, हम जितने प्रसन्न रहेंगे संसार के मनुष्यों के तनाव नष्ट होते रहेंगे, हम जितने सुखों में रहेंगे संसार के लोगों के दुख दूर होते रहेंगे। सब इस रहस्य को जान लें, भगवान के द्वारा चुने हुए महान रतन हैं सभी, हैं या नहीं? माताएं क्या समझती हैं? है ना, अपने स्वमान में रहना तो हम बहुत खुश रहेंगे। नॉर्मल रूप से देखा जाए तो छोटी छोटी बातें मनुष्य की खुशी को छीन ले जाती हैं। मान न मिला खुशी गायब, किसी ने मन इच्छित वस्तु न दी खुशी गायब, किसी की खुशी तो दूसरे को देख के गायब हो जाती है, दूसरे के अवगुण देखे खुशी छूमन कर हो जाएगी या नहीं? दूसरे के कपड़े अच्छे देखे होता है या नहीं? माताओं को अब नहीं होता, अब दुनिया में बहुत होता है। दूसरे को सुखी ज्यादा देखा अपना सुख फीका लगने लगा, दूसरे की थाली में ज्यादा भोजन देख लिया अपनी थाली फीकी लगने लगी, ये संसार की रीति बन गई है। जो आत्मा अपने में संतुष्ट है, ध्यान दें आप, जो संतुष्ट है वही सुखी है। मुझे बताना पड़ता है, मुझे मेरे को युगल मिले कल, वो माता जी बहुत संतुष्ट, बहुत संतुष्ट। उसका पति बता रहा था कि ये एक ऐसी आत्मा है जो न कभी किसी की शिकायत करती न मुझे कुछ कहती। बता रहा था कि हमारे पास एक समय ऐसा था, गरीबी आ गई, सब तो पैसे वाले हैं, वो कहा मैं इन्हें घर चलाने के लिए 1500 रुपए देता था तो भी ये मुझे ये नहीं कहती थी कि 1500 रुपए में घर कैसे चलेगा, बल्कि मुझे कहती थी हमारी नौकरानी 300 रुपए में घर चलाती है तो हम 1500 में क्यों नहीं चलाएंगे। बहुत कह रहा था संतुष्ट, कोई पूछे या ना पूछे संतुष्ट। ये संतुष्टता सुखों की जननी है। हम अपने को संतुष्ट आत्मा बनाएं और अपने से बातें किया करें कि भगवान को पाकर मैं संतुष्ट हो गई। रोज अपने को ये अच्छी बातें करेंगे, दूसरों को देखकर अपनी खुशी खो देना, दूसरों को देखकर अपने को संतुष्ट कर लेना, ये बुद्धिमानी नहीं है। ये बहुत सुंदर चीजें हैं, संतुष्टता, खुशी, सुख, आनंद, प्रेम। आपने सब देखा होगा, नीचे एक सन्यासी आए थे, अच्छे हिंदू महासभा के अध्यक्ष थे भारत के, चक्रपाणी जी। पहले बहुत मोटे थे, पिछले साल आए थे, अब पतले हो गए। किचन में कल 1.5 घंटा थे, सारा देख रहे थे, तो लोग उनसे पूछ रहे थे स्वामी जी आप पतले कैसे हो गए, क्योंकि पिछले साल आए थे वो, कहा 70 किलो वजन कम कर दिया है। लोग पूछ रहे थे कैसे किया, बड़ा मजा किया भी है, कहा खा के किया कुछ यूज किया होगा जड़ी बूटियों का। तो आज वो सवेरे अनुभव सुना रहे थे, बहुत सुंदर शब्द बोल रहे थे, बहुत प्रसिद्ध स्पीकर हैं ये। मैं देख रहा था कि देखो हम कल भी सोच रहे थे कि बाबा अगर इसको पकड़ ले तो ये बाबा का बहुत काम करेंगे। पिछली बार आए वो यहाँ, पहली बार तो ब्रह्मा कुमारी योगी गिलानी करते थे, दूसरी बार आए भाषण किया थोड़ा थोड़ा सा ठीक हुए, अब बाबा आ गए। तो देखो बाबा ने, मैं सोच रहा था, उसने एक अच्छी बात बोली कि जब शंकराचार्य थे ना पहले पहले, तब उन वो प्रसिद्ध कहाँ से हुए थे, तो तत्कालीन सबसे बड़ा विद्वान भारत का था मंडन मिश्र, पंडित मंडन मिश्र, उसको उन्होंने शास्त्रार्थ में हरा दिया था। शंकराचार्य 10 साल के थे और वो भारत का प्रकांड पंडित था, उसको शास्त्रार्थ में हरा दिया था। तो शंकराचार्य उसके गांव में गए तो लोगों से पूछा मंडन मिश्र का घर कहाँ है, तो कहा जहाँ दो तोते संस्कृत में बात कर रहे हो ना, वो मंडन मिश्र का घर है। तो उसने देख लिया भाई तोते हैं और संस्कृत बोल रहे हैं, संस्कृत बोलता है तोता थोड़ा, तो वो चला गया। तो कहा जहाँ निर्विकारिता हो, जहाँ निर्मल स्नेह हो, वहाँ समझ लेना ब्रह्मा कुमारियाँ हैं। आज उसने बोला और भी कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली। एक बहुत अच्छी बात बोल दी कि हम लोग कहते हैं सतयुग में भगवान ने ये कहा था, त्रेता में भगवान ने ये कहा था, द्वापर में भगवान ने ये कहा था, पर अब तो भगवान कह रहा है। वो कहते कहा था, अब तो वो कह रहा है। तो समझ लिया अच्छी बात को। तो मैं सोच रहा था, हम लोग चर्चा कर रहे थे आपस में कि इन सन्यासियों के संगठन में न तो शांति होती, न खुशी होती, न प्रेम रहता, आनंद तो बहुत दूर की चीज है। और जब ये ऐसी सभा में बैठते हैं जहाँ 20,000 लोग बैठे हों और गहन शांति हो, जहाँ चारों ओर का वातावरण ईश्वरीय प्रेम से भरपूर हो गया हो, जहाँ वायुमंडल में आनंद छाया हुआ हो, तो ये समझ लेते हैं कि सत्यता यही है। फिर उन्होंने सन्यासियों के संगठन देखे हैं, लड़ाई होती है, चीज नहीं मिली तो चिमटों से लड़ाई हो रही है, जैसे घी कालो नहीं मिला तो झगड़े हो रहे हैं, खाना पीना रह गया, सब कुछ छोड़ के आ गए, अटक गए खाने पीने पर। तो बहुत अच्छा लगा हमें कि एक अच्छा सन्यासी गुड फीलिंग के साथ यहाँ से जा रहा है। तो भगवान जिन्हें मिल गया हो, जो ऐसे अनुभव दो दो घंटे करते हो परमानंद, जहाँ सारा वातावरण प्रभु प्रेम की तरंगों से भरपूर हो जाए, रखने को मिलता है ना ऐसे में, ये बहुत बड़े भाग्य की बात है। इसको याद करके हम अपने को खुशी और आनंद से भरपूर करें। आनंद सबसे बड़ी चीज होता है, खुशी उसके बहुत छोटी चीज है, आनंद अध्यात्म की योग की सर्वश्रेष्ठ अनुभूति है, जिसमें प्योरिटी भी है, ईश्वरीय नशा भी है और खुशी भी मिक्स है। तीनों जब मिल जाती हैं तो आनंद की स्थिति बनती है। तो हम सभी अपने आनंद को और अपनी खुशी को किसी छोटी मोटी प्राप्ति पर आधारित न करें। हमारी संतुष्टता भी हमारे अंदर हो और हमारी खुशी भी हमारे अंदर से उपजती हो। ज्ञान का सुंदर चिंतन करते रहें, मन को खुश करते रहें। चलो बाबा से बातें करेंगे और मन को आनंदित करेंगे।
स्वरूप तो हम सब ने देखा ही,
से बात थी, बाबा हम सबको मन जीत बनाना चाहते हैं। क्यों बोलो, क्यों जानते हैं आप सभी? सुशील तो बोलो है? मन भागता रहता है इसलिए मन जीत बनाना चाहते हैं। बोलो, मन जीत तो जगत जीत। हमें संसार को बदलना है, और संसार के साथ संसार में एक और क्या चीज है जो अभी मुरली में भी आ चुका है, तुम प्रकृति को भी बदलने वाले हो। प्रकृति को बदलने का काम वैज्ञानिक नहीं कर सकते, या कर सकते हैं? वो बता सकते हैं कि ये हो गया है, सतो प्रधान बना दे, प्योरीफाई कर दे प्रकृति को। ये काम योग बल से ही होता है। मन को जो कंट्रोल कर ले वो जगत को कंट्रोल कर सकते हैं। मन पर जो कंट्रोल कर ले वो प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। वो संकल्प से ही सब कुछ कर सकेंगे। मन की शक्ति ही संसार में सबसे बड़ी शक्ति है। अब बीमारियों पे जरा सा ख्याल करें, कहाँ से बीमारियां पैदा हो रही हैं? हालांकि आजकल भोजन से, पानी से, पूर्व जन्मों के पाप कर्मों से लाइफ स्टाइल बदल गया है, मनुष्य को घूमने फिरने का टाइम नहीं, ढंग से खाना खाने की फुर्सत नहीं, टीवी के आगे बैठ के भोजन करते हैं, लेकिन आत्मा से जो तरंगे निरंतर शरीर में फैलती हैं, वो बहुत कमजोर हैं, वो बहुत निगेटिव हैं, इम्प्योर हैं, तनाव से भरपूर हैं, अशांति से भरपूर हैं। वो शरीर के भिन्न भिन्न अंगों पर बुरा असर डाल रही है। अगर यहाँ से मन की तरंगे बहुत सुंदर सारे शरीर में फैलने लगे तो अनेक रोग ठीक हो जाते हैं। मैं छोटा सा अनुभव सुना दूं एक दीदी का। एक पुरानी बहन, बुजुर्ग है, उसको सारी बीमारियां हैं, समझ लेना सारी आजकल की सारी बीमारियां, शुगर भी, हाई ब्लड प्रेशर भी, हार्ट का भी, घुटने भी दर्द कर रहे, चला भी नहीं जाता, बुखार भी रहता है, सिर दर्द भी रहता है। मैं पूछा करता हूँ बच्चा कौन सा है, तो मैं उनके सेंटर में गया था, एक पब्लिक प्रोग्राम हुआ, एक ब्राह्मणों का हुआ, अभी की बात है एक मास पहले। तो मैं संकल्प शक्ति पे एक क्लास जरूर लेता हूँ, और वो संकल्प शक्ति की मुख्य बात है सभी को सीख लेनी है। जो संकल्प हम बार बार करते हैं उसका हम निर्माण करते हैं। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, निर्माण करने की शक्ति। तो मैं ऐसे ही हंसी में सुना रहा था कि कई बहने हैं, थोड़ी सी बीमार हुई, बस मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ, अब मैं ठीक होने वाली नहीं हूँ, अब तो मैं गई, मैं तो बहुत बीमार हूँ, यही उसका था, मैं तो बहुत बीमार हूँ, बस भाई अब आखिरी दिन आ गए, अब जाना है इस दुनिया से, ठीक तो होना नहीं है, बाबा भी मदद नहीं करता, बाबा पे भी गुस्सा करते रहते हैं। एक बाबा पे गुस्सा करने वाला है, दो लोग मेरे पास आए परसों, वो मैं बाद में कभी सुना दूंगा। तो मैंने क्लास में सिखाया कि ये आप सोच रहे हो तो बीमारियों को निमंत्रण दे रहे हो, आप सोचो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कुछ बातें मैंने सुनाई। तो उसने क्या संकल्प कर लिया, मैं तो दौड़ती भागती चुस्त योगी हूँ। तो मैंने बता रही थी, वो ठीक हो गई, हाथ छूट गई, उसकी बैठ छूटी, अब वो दौड़ती भागती योगी बन गई है। ये बात केवल एक मास की है। मन की शक्तियाँ सबसे बड़ा काम कर रही है। समस्या भी कोई आ गई, ये समस्या बहुत समस्या है, मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं तो बहुत दुखी हूँ, काम ही नहीं हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं हम, उनका ही निर्माण कर रहे हैं। मैं बहुत सुखी हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये संकल्प करेंगे तो यही होगा। तो मन की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है, और मन की शक्तियाँ नष्ट कैसे होती हैं? व्यर्थ संकल्पों से। इसलिए मन को कंट्रोल करना, मन को जीतना, माना मन को अपनी इच्छा अनुसार चलाना, मन हमें न चाहे हम मन को चलाए न चाहे, ये पावर हमें अपने अंदर इकट्ठी करनी है। तो जो मन के मालिक बन जाएंगे, जिनका मन शक्तिशाली हो जाएगा, जिनका मन पॉजिटिव हो जाएगा, वो विनाश काल में प्रकृति को भी शांत करेंगे, वो दुखी आत्माओं को सुख दे सकेंगे, वो एक जगह पर बैठकर सारे संसार में शांति की तरंगे फैला सकेंगे। इसलिए हमें मन को शक्तिशाली, पॉजिटिव, श्रेष्ठ संकल्पों से भरपूर करना ही है। इसके लिए मन को जीतना, माना इसका अर्थ ये नहीं कि मन को जीरो कर देना। साकार मूल्यों में बाबा ये सब यूज नहीं करने देता था, पता है ना? कोई कहता था मन जीतो, कहता मन थोड़ा ही जीता जाता है, माया को जीतो। पर जो माया को जीत लेते हैं वही मन को भी जीत लेते हैं, क्योंकि लोगों ने इसका अर्थ ये समझ लिया कि मन को जीरो कर दो, नो थॉट, कुछ भी सोचना नहीं है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि मन को तो सोचना है। लेकिन मन हमारी इच्छाओं के अनुसार सोचे, जो हम नहीं चाहते मन वो न सोचे। इधर मन जा रहा है हम उसे सहज रोक सके, इच्छाओं के पीछे भाग रहा है हम उसे न भागने दें। इसके लिए हमारे अंदर क्या क्या चाहिए, बाबा ने भी यूज किया कल ये सब, शक्ति स्वरूप। एक चीज देखो, सभी एक उदाहरण ले लें जो मन के लिए प्रसिद्ध उदाहरण है। मन को क्या कहा जाता है? घोड़ा। अब एक घोड़ा तेज दौड़ रहा है, उस पर एक सवार बैठा है, वो उसे कब कंट्रोल कर सकता है? एक तो लगाम, क्या लगाम? केवल उसके हाथ में हो या नहीं, कंट्रोलिंग पावर भी हो, वो घोड़े को कंट्रोल करने की विधि भी जानते हो। लगाम तो है, लेकिन यहाँ खींचनी है, वहाँ ढीली करके हेड लगा दी, घोड़ा और तेज दौड़ने लगा, परेशान होके चिल्लाने लगे, बचाओ मुझे घोड़ा लेके भाग रहा है। मैं घोड़े को लेके नहीं भाग रहा, घोड़ा मुझे लेके भाग रहा है, मदद करो मेरी। तो अगर ऐसी गड़बड़ कर दी मन के साथ भी, तो मन नचाने वाला हो जाएगा। तो एक ज्ञान की लगाम, श्रीमत की लगाम, बुद्धि लगाम है ना, बुद्धि कंट्रोलर है मन की। बुद्धि के पास जितना सद्विवेक होगा, बुद्धि में जितनी पावरफुल ज्ञान की पॉइंट्स होंगी, हम मन को भटकने से रोक सकेंगे। दूसरा, ये सवार आत्मा बहुत पावरफुल भी होनी चाहिए। कमजोर सवार हो तो जैसे ही घोड़ा दौड़ेगा वो गिर जाएगा, हो जाएगा ना, मृत्यु होती है वो तो भी। इसलिए वो एक्सपर्ट भी हो, उसको विधि भी आती हो, और वो शक्तिशाली भी हो, और वो घोड़े को अच्छी तरह समझता भी हो। समझ गए ना, घोड़ा कौन सी भाषा समझता है, घोड़ा कैसे कंट्रोल में हो सकता है। बहुत सारे घोड़े, पहले घोड़ों की प्रतियोगिता होती थी ना, स्वयंवर में भी होता था, और घोड़ों के लिए एक बात प्रचलित थी, घोड़े को अगर पावरफुल दृष्टि दे दी जाए तो घोड़ा तुम्हारे वश में हो जाता है। श्री कृष्ण के लिए दिखाया ना, आठ बैलों को उसको एक साथ नचना था, कोई नहीं कर रहा था, आठों बैल बहुत खतरनाक थे, उसने क्या किया, ये लोगों को पता नहीं है, उसने हरेक को दृष्टि दे दी, सब उसके कंट्रोल में हो गए, आराम से खड़े हो गए, आके के लो कर लो जो करना। घोड़े का भी यही है। तो घोड़े की नेचर जानना चाहिए, अर्थात मन की नेचर जानना चाहिए, मेरा मन मेरे कंट्रोल में किस तरह हो सकता है। अनंत है, जैसे कईयों ने कह दिया था ना, जो मन को इच्छा हो देते जाओ, आखिर मन खुश होकर तृप्त हो जाएगा, पर मन की नेचर ये नहीं है। जितना मन को भोग खिलाएंगे उसकी आसक्तियाँ बढ़ेंगी या घटेंगी? बढ़ेंगी। अगर कोई ये मानता है कि विषय विकारों में लग जाओ विषय विकार शांत हो जाएंगे, तो वो सबसे बड़ा क्या है? अज्ञानी है। एक कुमार ने ये गलती कर दी, सुना होगा उसी आचार्य का भाषण कहीं, यही था मधुबन में पीछे सेवा में, मुझे बताया मैं ये गलती कर चुका हूँ, मुझे इच्छा हो गई कि इस भोग को खूब भोग लेता हूँ, आखिर तो मन संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन मन संतुष्ट नहीं हुआ, मेरा हाल बिगड़ गया है, मुझे मदद करो। यही सेवा में था 3-4 मास पहले। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि मन भोग भोग कर खुश हो जाएगा, उसकी भोगने की नेचर बढ़ जाएगी। तो अपने मन की नेचर को समझना है, जिस मन में बहुत इच्छाएं हो, जो कामनाओं का गुलाम हो, जो विषय विकारों की ओर भाग रहा हो, वो कभी शांत नहीं होगा, उसकी भटकन कभी समाप्त नहीं होगी, वो भटकन बढ़ती जाएंगी। इसलिए जिसे अपने मन को कंट्रोल करना है, वो सबसे पहले इच्छाओं को समाप्त करें। पहली धारणा ध्यान देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए मान चाहिए, भगवान को मिलने के बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर हम ऐसी स्थिति अपनी बना ले तो मन शांत हो जाएगा। भगवान तो मिल गया, लेकिन ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, दूसरों को बहुत मान मिल रहा है, मुझे भी चाहिए, दूसरे टीवी पर आ रहे हैं, मेरा भी फोटो खिंच जाए एक बार, दूसरों को ये मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिला। छोटी छोटी इच्छाएं मन को विचलित करती हैं। इसलिए तृप्त आत्मा तुम्हें पाके यहाँ पा लिया है, बाबा से बात करते रहो, जन्म जन्म तुम्हें पाने की तीव्र तमन्या थी, अब तुम मिल गए, सब कुछ मिल गया। अपने को एक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तो मन को कंट्रोल करने के लिए कुछ बातें याद रख लेंगे। प्रभु प्रेम में जो मगन हो जाते हैं, उनका मन शांत हो जाता है, और ये कला है कि हम बाबा से इस तरह की बात करें कि उसके प्रेम में हमारा मन मगन हो जाए। ये जबरदस्ती नहीं हो सकता, प्रभु प्रेम बहुत सूक्ष्म है, वो स्थूल नहीं है कि सिखा दिया जाए ऐसे कर लो, लेकिन एक विधि है उसकी। जो आत्माएं जितना देह से न्यारी होती हैं, उतना ही परमात्म प्रेम उन्हें खींचता है। देह से न्यारापन हमें परमात्म प्रेम की अनुभूति कराएगा। दूसरी चीज, जिसको अपने मन को कंट्रोल करना है, छोटी सी विधि ध्यान में ले लें। गाड़ी अगर बहुत स्पीड से चल रही हो तो ब्रेक लगाया जाएगा, माता जानती है, अगर ब्रेक लगा दिया जाए तो क्या होगा, पलटी खा जाएगी गाड़ी, कई पलटे खाएगी। इसलिए ब्रेक लगाने से पहले क्या करना पड़ता है, स्पीड कम। अगर हमें मन को कंट्रोल करना है तो मन की स्पीड को धीमा करना पड़ेगा। सभी को पता हो हमारे मन में 1 मिनट में 20 से 25 संकल्प उठ जाते हैं, इसको हमें कम करना है। अब जबरदस्ती तो कम नहीं किया जा सकता, कम करने का तरीका है, 3 तरीके अपनाएंगे। अशरीरीपन का अभ्यास, अगर 1 घंटे में आधा मिनट भी कर लिया जाए तो 1 घंटे के लिए मन की स्पीड डाउन हो जाएगी। दूसरा, स्वमान का अभ्यास, स्वमान हमारे मन को शांत करने लगता है। और तीसरा है जो बहुत जरूरी है, जो बहुत ब्राह्मणों में कम है, श्रेष्ठ संकल्पों के आनंद में रहना। ये श्रेष्ठ संकल्प हमें रोज मुरलियों से मिलते हैं, हमें स्वमान से मिलेंगे, हमारे अपने चिंतन से निकलेंगे। इन तीन तरीकों के द्वारा हम अपने मन को ऐसी नेचुरल स्थिति में ला सकते हैं कि मन की स्पीड आधी हो जाए, 10-12 संकल्प, तब मन सहज कंट्रोल होगा। एक और चीज जोड़ लें, चौथी भी, आत्मिक दृष्टि। दैहिक दृष्टि मन को भटकाती है, स्पीड को फास्ट कर देती है। आत्मिक दृष्टि सब आत्माएं हैं, ये दृष्टि हमारे मन को शांत करने लगती है। सभी अपने अपने घरों में एक दो बार रोज अभ्यास किया करेंगे, सबको आत्मा देखें। बच्चे सब, बड़े छोटे, सब आत्माएं हैं। और अगर ये संकल्प करेंगे कि सभी देव कुल की महान आत्माएं हैं, तो और अच्छी फीलिंग होगी, आपके घर के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर बन जाएंगे। तो इस तरह हम अपने मन की स्पीड को धीमे करने लगे। ये मेहनत सबको करनी है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर कोई चाहे तो इसमें सफल हो सकते हैं। द्वापर युग से जब से साधनाएं प्रारंभ हुई, बहुत सारे ऋषियों ने, सन्यासियों ने, तपस्वियों ने इसको लक्ष्य बनाया कि मन को बिल्कुल शांत कर दिया जाए। उसके लिए एकाग्रता के अभ्यास हुए, क्योंकि मान्यता थी मन अगर लंबा काल शांत हो जाता है तो मन चाही सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी तपस्वियों ने मन को शांत करने का प्रयास किया, परंतु केवल जबरदस्ती ध्यान लगाकर मन को शांत नहीं किया जा सकता। आत्मा परिस्थिति ये पता था, यहाँ ध्यान लगा लो, पर यहाँ क्यों लगा लो ये पता नहीं था। स्वमान का पता नहीं था, परमात्म ज्ञान संपूर्ण नहीं था, एक यथार्थ विधि नहीं थी। जिसने जैसी साधनाएं चालू कर दी थी वो चालू रही, और उसके द्वारा इसलिए बहुत कम लोग, 1% भी नहीं, बहुत कम लोग, हजारों में से कोई एक उसमें सफल हुए। अगर विधि क्लियर हो, अगर ज्ञान संपूर्ण हो, तो 100 में से 50 लोग सफल होंगे। तो हम सबके पास बहुत अच्छी विधि है। सभी बाबा की इच्छा को पूर्ण करने का संकल्प कर ले। बाबा की इच्छा क्या? हमारे लिए कल्याणकारी बात है कि हम अपने मन के मालिक बन जाएं। मन को जीतेंगे तो जगत जीत बन जाएंगे, विश्व के मालिक बन जाएंगे। ये संसार का जो वर्तमान हाल है, जिसमें दुख, शांति, करप्शन और लड़ाई झगड़े, क्रिमिनल एक्ट, जहाँ तहाँ सब कुछ रोज वही अखबारों में रहता है, ये सब खत्म हो जाएगा। सभी इसको अपना लक्ष्य बनाएंगे। ओम शांति। योग।